તારીખ 2/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 48
જબકે હર હાલત મેં ભરોસા કરને લાયક નહીં હૈ ક્યોંકિ કિસી કા કોઈ નિશ્ચય તો હૈ નહીં ઓર આઇસકા કિસી કો પતા નહીં હોતા ઇસલિયે કિસકે ભરોસે બેઠના યે તો ભરોસા કરને લાયક નહીં ઓર ભરોસા કરેંગે તો ધોખે મેં રહ જાયેંગે દૂસરા કુછ નહીં હોગા लेकिन एक व्यामोह ऐसी चीज होती है कि सही बात समझने पर उसकी अवगणना हो जाती है। एक बहुत ट्रेजेडी है, करुणावस्था है कि सही बात सुनने पर भी और मुख्य करने योग्य होने पर भी उसकी मुख्यता नहीं हो पाती है और फिर उसका दिन भुगतना पड़ता है। कानून किसी को छोड़ता नहीं है। कोई चूहा ऐसा विचार करे कि बिल्ली आने पर हम आंख मीच जाएंगे, बिल्ली को देखेंगे ही नहीं, तो क्या बिल्ली उसको छोड़ देंगे, आ जाएगी उसको। ऐसे हम सही बात सुनने पर हमारे विवेक की आंख बंद कर दें तो इससे इसका दिन हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, बनने का ये बनने वाला तकलीफ इस तरफ इस तरह की है कि जैसे व्यसन जिसको होता है उसको बिना इस व्यसन वाली चीज लिए बिना चलता नहीं, ऐसी तलब लगती है तो ले लेता है। डॉक्टर वैद्य उसको कहता है कि अभी तो लेगा तो मर जाएगा तो भी ले लेगा, ऐसी हालत है। मैंने देखा था, हमारे रिश्तेदार थे, 38 साल का लड़का था, हमारे छोटे भाई का, ऐसा उसको कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर से गले में गांठ निकली, पर वो चेन स्मोकर था, तो डॉक्टर ने बोल दिया तो तुम आज से बंद कर दो, तुमको बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पीना है, ये चीज मिटने वाले तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तुमको उसको छुना भी नहीं है, लेकिन उसको उसकी तलब इतनी तलब लगे, इतनी तलब लगे तो रह नहीं सकता। कैंसर की पीड़ा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तलब को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए क्या हालत है टेंशन की, मरने को बर्दाश्त कर सकता है, वैसा ही जवाब दिया उसने, पी लिया, लेटरिन में जाकर के पी लिया, तो वास आती है, दवाई देने वाले दवाई देते, इसकी वाइफ ने दवाई दी, वास कैसे आई, तो पी लिया भी तो आपको तो सब उसको मारने लगे, क्या समझते तो मैं मर जाऊंगा ना, तो कर पांचवे दिन मर गया हूं तो छठा दिन तो मेरा होने वाला नहीं है, फिर मैं क्यों नहीं करूंगा। देखो जवाब ऐसा दे दिया कि मेरा पंचमी से छठवी होने वाली नहीं है और मेरे से रहा जाता नहीं, मरना स्वीकार करता है लेकिन छोड़ना स्वीकार नहीं करता। ऐसे हमें वर्तमान स्थिति की तलब ऐसी है कि इस स्थिति को गौण करना हम पसंद नहीं करते, तो चाहे मर जाए हम, हमारा आयुष पूरा होने की तैयारी है, फिर भी हमारी वर्तमान स्थिति उस मानने को मान्यता को छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे इतनी अनुकूलता को कैसे छोड़े, सब प्रकार के अनुकूलता है, सब प्रकार की सुविधा है, तकिया भी हमारे जैसे चाहिए ऐसा मिलता है और चद्दर भी, जूते भी और सब प्रकार के छोटी मोटी बातें भी। तो हम ऐसे हैं, कैसे हैं, ये सब चीज के बीच में हम इतने फिट हो गए हैं कि इधर उधर हिलते नहीं है। जी
फिट हो गए, बेहोश हो गए,
बेहोश हो गया, ऐसे बेहोश में फिट हो गया, ऐसी बात है। और आचार्य महाराज श्री गुरु आनंद अमृत अमृत का कटोरा लेके पीने को देते दे रहे हैं, खड़े हैं, ये तो कटोरा पी ले इधर मन हो जाएगा, एक घूंट भी भर लेना एक दफे तो इधर मन हो जाएगा, फिर कभी तेरी मृत्यु नहीं आएगी। तो उसको धक्का दे करके अनादर करते हैं, अच्छे हैं, वितराग है, इसलिए हमारे से रूठते नहीं है, ये बात अच्छी है कि वितराग है इसलिए रूठते नहीं है, वरना दुनियादारी के लोग होते तो क्या क्या बोल देते हैं, घर के भी बाहर वाले नहीं, घर के भी अनादर करो नहीं, घर में किसी का कितना सुना देते हैं। लेकिन अच्छा है कि हमारा इस विषय में पाना पड़ा है वितरागों से, इसलिए हम धक्का देते हैं, तो उतनी ही उतनी करुणा लेकर के फिर खड़े होकर हमारे सामने आते हैं बाबा, अरे भैया तू बच्चा है, तू नादान है, हम तेरी नादानियत को क्या है? क्यों गिनती में लेंगे? तो फिर सामने खड़े होकर के आते हैं, फिर भी कभी हमारे एक पल ऐसे आ जाए होनहार की, अच्छे अच्छे होनहार की एक पल आ जाए तो निबिड़ा हो जाएगा। तो ये अनुभव करना है कि मनुष्य बने रूप से हम अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य चिन्ह जिसको प्रकट हुए हैं, जो प्रकट चैतन्य चिन्ह से चिन्हित है, ऐसा जो चैतन्य का आत्म स्वभाव है वो छिपा नहीं रहता है। हम जीते हैं, जिंदे रहते हैं, ये जीवत्व शक्ति मौजूद है और उसका प्राण कौन है, ज्ञान दर्शक तो इसका प्राण है। जीवत्व शक्ति का प्राण कौन है, ज्ञान दर्शन तो इसका प्राण है, और ये प्रगट है, ज्ञान प्रगट है, दर्शन प्रगट है, चैतन्य स्वभाव प्रगट है, प्रगट लक्षण से भान होता है, प्रगट लक्षण है भाव आत्मसिद्धि। उसके समीप जाओ, समीप जाकर के अनुभव करो, अनुभव हो सकता है, उसके समीप जाकर के अनुभव करने पर एक चमत्कारिक अनुभव होगा। यह अनुभव ऐसा होगा कि मनुष्यत्व को हम जानेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। क्या वर्तमान में जो मनुष्यपना की योग्यता है, इस योग्यता की अवस्था की सही जानकारी होगी, लेकिन हम हमारे स्वरूप को छोड़ करके मिटा करके उसको हो गए हैं, ऐसा अनुभव हमें होगा नहीं। और एक हमारे जीवन में नई शक्ति का, नई शांति का संचार चालू हो जाएगा, अनुभव होते ही आत्मिक शांति का, आत्मिक सुख का एक नया संचार पैदा होगा, नया करंट चालू हो जाएगा कि जिससे इसकी ही मुख्यता रह जाएगी, फिर कभी संसार के किसी भाव की मुख्यता होगी नहीं। बहुत ताकत है, एक क्षणार्थ के अनुभव में कितनी ताकत है इसका विचार किया जाए तो अनंत जन्म मरण को खत्म करने की उसमें ताकत है। एक मरण से कोई बचा है तो उसकी कीमत की कोई कीमत करने की कोई हमारे पास चीज नहीं है, उसकी कीमत इस चीज में की जाए। जबकि अनंत जन्म मरण को खत्म करने की शक्ति एक अनुभूति के क्षण के कुछ हिस्से में ये बात है, उतनी ताकत ही है, चमत्कारिक अनुभव है। इसलिए इसकी जितनी ताकत है उतनी दिखाई जाती है कि ऐसा कार्य करने से करने के लिए जीव नालायक हो जाए। अगर ऐसा न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो जाए। और ये तैयारी होना ही योग्यता है, और कुछ बात नहीं है। योग्यता कोई बड़ी बात नहीं है, जीव की तैयारी को योग्यता कहते हैं, वो तैयार नहीं हुआ वही अयोग्यता है, बस दूसरी कोई बात नहीं है। और एक सेकंड में वो अयोग्यता पलट करके योग्यता में आ जाती है, जब तैयारी में आ जाता है तभी उसमें पीछे आगे पीछे कुछ बुराई का धंधा नहीं होता। अनन्यत्व का आत्मा अनन्य स्वरूप ही है, एक चैतन्य का जिसमें कोई देवदार के मनुष्य के लिए का कोई अन्य अन्य बना है ही नहीं। इसको समझाया तब समुद्र के दृष्टांत से इसका नियतत्व क्या है, नियत है आत्मा, त्रिकाल नियत स्वरूप मूल स्वरूप है, जबकि अवस्था से अनियत है। जैसे समुद्र वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर और नियतता से देखा जाता है, कभी उठ आती है कभी वृद्धि आती है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जा करके समुद्र समुद्र ही रहता है। ये बढ़ते ही बहुत उसमें न पानी बढ़ा है न पानी घटा है, कभी और आने से तो पानी घट गया है क्या, नहीं घटा है। और वर्षात बारह मेघ बरसते हैं तो कोई पानी बढ़ जाता है, ऐसा होता है। गर्मी के दिनों में लाखों टन पानी ऊपर बादल में चला जाता है, समुद्र में कमी नहीं होती, लाखों टन पानी गिरने से कोई समुद्र में बढ़वारी नहीं होती। ऐसा इनका जो स्वभाव है उसको देखते हैं तो अनियतता है, सत्यार्थ है, अभूतार्थ है, बटगट भी नहीं है, वो तो दृष्टांत है। उसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप या भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा की अवस्था में वृद्धि हानि ज्ञान से ही पता चलता है, ज्ञान बढ़ता भी है ज्ञान कम भी होता है, कमी वैसी होती रहती है अवस्था में। किंतु नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है और असत्यार्थ है, मूल स्वरूप तो अवटगट है, न बढ़ता है न घटता है, शाश्वत एक रूप चैतन्य स्वभाव। जो मूल स्वरूप है वो तो अगुरु लघु शक्ति रूप है, और अवस्था में षट प्रकार की हानि वृद्धि होती ही रहती है प्रति समय। तो प्रति समय जो बढ़घट दिखने में आती है ऐसा मूल स्वरूप नहीं है, यानी अवस्था ऐसी होने पर भी आश्रय करने योग्य नहीं है, मुख्य करने योग्य नहीं है, कौन करने योग्य है, क्योंकि इससे हमें सुख शांति मिलती नहीं है। देखो ना कि हमें हमारा स्वरूप नित्य होने से हमें सभी चीज नित्य चाहिए। शरीर भी हमको नित्य है तो अच्छा, कभी नहीं मिलते तो छूट नहीं जाए तो अच्छा। मकान भी हमारा इतना बढ़िया होना चाहिए कि कभी गिरे ही नहीं। एक भी चीज ऐसी हम लेते हैं कि जिसको बदलने नहीं पड़े, ऐसा हम क्यों चाहते हैं? सब चीज मजबूत क्यों लेते हैं? टकला भी क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि हम स्वरूप से ही नित्य है, हमारी नित्यता ही हमें हर जगह चाहिए। और अनित्यता में भी हम नित्यता चाहते हैं, वो कितना नित्यता हमको कितनी प्रिय है कि अनित्यता में भी हमें नित्यता ही चाहिए। किंतु अनित्यता हमेशा अनित्यता रहती है, नित्यता हो ही नहीं सकते। अगर हम धोखे में रह जाएंगे, अनित्य को नित्य समझ कर बैठ जाएंगे तो इसका रिएक्शन आए बिना रहेगा कि मृत्यु के काल में दुख क्यों होता है। मान बैठे थे कि हम मरेंगे ही नहीं, नौबत बजती है तो पता चलता है कि अभी मृत्यु आ गई, तो दुख होता है कर रहे सब बिना क्या होगा। अरे तेरा स्वरूप को कुछ होने वाला है ही नहीं, आत्मा को भी मरती नहीं और आत्मा को मरने का कोई सवाल ही पैदा होता है। लेकिन वर्तमान अनित्य अवस्था का जिसको महत्व होता है उसको नियम से दुख होता ही है, क्योंकि ये महत्व करने की चीज है ही नहीं, इसलिए उसको मान कराते हैं। तो पर्याय का क्यों महत्व करना है? ये छुटने वाली चीजें छुट गई और मैं स्वरूप से ऐसा हूं कि छूट सकता ही नहीं। जहां मेरा अस्तित्व है वो तो मिटता ही नहीं, तो मेरे अस्तित्व का मैं अनुभव करता हूं तो नित्यता का अनुभव होता है। नित्यता का अनुभव होता है तो कोई पर्याय आती जाती है उसमें मैं मेरा आना जाना होता नहीं है।
स्वाभाविक
पर्याय पलटती है, मैं यूं का यूं रह जाता हूं, उसी अनुभव करना है कि कोई चिंता नहीं है। चिंता तो ये नित्य स्वभाव को भूलने से सब प्रकार का भय, सब प्रकार की चिंता, सब प्रकार की आकुलता और दुख, दुख और एकांत दुख ही अनुभव में आएगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आचार्य महाराज करुणा करके दुख से छुड़ाते हैं। यही बात मुलाकात टीका चल गई है संक्षेप में फिर से थोड़ी बात शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध ने द्वारा अनुभव में आता है। इस शुद्ध आत्मा को यहाँ अवधस्पृष्ट अनन्य दीर्घ और विशेष अर्थयुक्त ऐसे पांच भाव होते हैं इस गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य महाराज ने दर्शाया है। कहते हैं कि ऐसी आत्मा की अनुभूति है ये शुद्ध नहीं है, स्वानुभूति है यह शुद्ध नहीं है, और ऐसी अनुभूति यही आत्मा है। अनुभव प्रधानता से और अनुभव में ये अनुभूति ही आत्मा है, इसलिए अनुभूति आत्मा है कि अनुभूति में आत्मा का वेदन है, इसलिए आत्मा में आत्मा का वेदन नहीं है, अनुभूति में आत्मा का वेदन है, इसलिए हाँ जी अनुभूति माने पर्याय, फिर भी यहाँ यह प्रकरण नहीं चलता है। वेदन तो पर्याय नहीं होता है, इसलिए तो उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा का अनुभव न हुआ कि अनुभव में हुआ, जो शुद्ध नए स्वरूप अनुभव है उसमें आत्मा का अनुभव कहा जाता है, इसलिए ही आत्मा है। इसको हम आत्मा इसलिए कहेंगे कि इसके बिना आत्मा है ऐसा कहां रहा, अगर स्वानुभूति नहीं है तो इसके पहले आत्मा है वो कहां रहा।
दूसरा तो ये जो गाथा है ये तो अभेद बताने के लिए ही है, पर्याय करना है
वो ठीक है। दूसरा क्या है कि बताने का भी दो तरीका है, एक तरीका तो वो है कि जिसमें सिर्फ इसकी व्याख्या की जाती है, परिभाषा होती है, थ्योरी होती है, और एक बताने का तरीका है वो प्रयोगात्मक होता है। तो यहाँ प्रयोगात्मक पहलू से अनुभूति को आत्मा कहा। क्या वैसे तो अवधस्पृष्ट अनन्य ही आत्मा है, फिर भी जब शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध नए उत्पन्न होता है तो अनुभूति होती है उसके। तो अब आत्मा अच्छी तरह दर्शाने के लिए या तो आत्मा का अनुभव से आत्मा को दर्शाने के लिए, बातों से नहीं, विकल्प से नहीं, परलक्षी ज्ञान से भी नहीं, अनुभव से आत्मा को दर्शाने के लिए कहते हैं कि अनुभूति की आत्मा है, प्रत्यक्ष है, पर यह अनुभूति आत्माकार है, जैसा आत्मा है वैसे ही अनुभूति है, इसलिए अनुभूति ही आत्मा है। और इस प्रकार अनुभूति में भी आत्मा ही प्रकाशमान होता है, जो मंगलाचरण में भी कहा कि स्वानुभूत्या प्रकाशते, तो स्वानुभूति से ही प्रकाशमान हो रहा है। अगर स्वानुभूति नहीं है तो उसका प्रकाशमान बना दिए कहीं है
नहीं
पता नहीं। अनुभूति नहीं है तो आत्मा लापता हो गया है, ये बात है। अब कहते हैं कि ये अनुभूति कैसे होती है, कि जो भी आत्मा का व्यवहार में का विषयभूत पहलू है वह स्पष्ट आदि है, अन्य अन्य पढ़ा आदि उसको गौर किया जाए और ये वचस्पृष्ट अन्य नियत आदि जो मूल स्वरूप है इसको मुख्य किया जाए, उसका लक्ष्य किया जाए तो स्वानुभूति होती है। ये स्वानुभूति करने की कार्य पद्धति है। ज्ञान में दोनों बात आएगी, जो व्यवहार में का पर्यायार्थ होने का विषय जो अंश है वो भी ज्ञान में आएगा क्योंकि वो तो पर्याय में ही। अब जब त्रिकाल ने शुद्धने का विषय भूत आत्मा का ज्ञान कराया तो वहां मुख्यता करने कराने का हेतु भी है। साथ साथ दोनों अपने अपने स्थान में होने पर भी पर्यायार्थिकने का जो विषय भूत है उसको भाव कराते हैं और द्रव्यार्थक ने का शुद्ध ने का विशेष आत्मा है उसको मुख्य कराते हैं। ये स्मानुभव करने की कार्य पद्धति है। ये कार्य पद्धति से पांचों प्रकार की जो विशेषता शुद्धात्मा की कही उनको दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। इसमें तीन बात तो चल गई, तीन दृष्टांत भी चल गया। अब चौथी बात कहते हैं गुण भेद वाली अविशेष जो आत्मा को कहा कि आत्मा अविशेष है, मैंने सामान्य स्वरूप है, विशेष नहीं माने सामान्य स्वरूप है, उसका दृष्टांत कहते हैं।
ये दूसरा तीसरा बोल है
जी,
दूसरा तीसरा जो बोल है इसको थोड़ा सा कुछ हाँ,
दूसरा है मिट्टी वाला दृष्टांत कि जैसे मिट्टी के अनेक बर्तन बनते हैं लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहती है। बर्तन फूटता है तो बर्तन का नाश हो गया ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नाश हो गया ऐसा हम अनुभव कर सकते नहीं है। वैसे मनुष्य प्रणा व्यतीत हो जाएगा, चारों गति के अन्य अन्य जो पर्याय हैं उसका नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा, वो अनन्य है, अपने स्वरूप के साथ अनन्य है, मूल स्वरूप है वो अनन्य है, उसमें अनेक विविधता नहीं है। चारों गति के पर्याय में अनेक विविधता है, दूसरे दूसरे पर्याय में भी अनेक विविधता है संसार में, किंतु आत्मा जो एक रूप है उसमें अनेक विविधता नहीं है। ये दूसरी बात थी। तीसरा दृष्टांत लिया था समुद्र का कि समुद्र समुद्र ही रहता है, बढ़ती ओट है वो अपने स्थान में होने पर भी समुद्र समुद्र ही रहता है, इसलिए पर्याय में कमी वैसे हो सकती है किंतु आत्मा आत्मा के मूल स्वरूप में कभी कोई बदगट होती नहीं है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता भी है। ये वृद्धि हानि पर्याय में लागू होती है वो तो पर्यायार्थित रहने का विषय है, मूल स्वरूप में कभी वृद्धि हानि होती ही नहीं। पर्याय में होती है इसलिए तो
सिद्धावस्था
में, हाँ सिद्धावस्था में वैसे भी वैसे रहती है लेकिन वहां पर शंकर हानि वृद्धि एक समय में है, वृद्धि हानि पर्याय में होती है और पर्याय जितना ही अपने को अनुभव करना यही इच्छा तो है, पर्याय बुद्धि को हो पर्याय मुंडा कहो क्या यही मिथ्यात्व है, यही दर्शन हो रहा है। क्यों कि हम तो त्रिकाल शाश्वत एक रूप है, मूल स्वरूप से तो ऐसे हैं, मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, उसका अपमान नहीं रहता और बुद्धि हानि रूप पर्याय में एकत्र होकर के उतना ही अपने को अनुभव करते हैं, ये मिथ्या अनुभव है, ये अज्ञान है। भले संयोगी नहीं है लेकिन इसमें मतभेद तो है, वृद्धि हानि तो है ही नहीं, तो वृद्धि हानि है वो हमारा रूप नहीं है, हमारा मूल स्वरूप ऐसा नहीं है। यानी वृद्धि हानि परिहार में होने पर भी तो आश्रय करने लायक नहीं है, मैं ऐसा हूं ऐसा आश्रय करने लायक नहीं है, तो गौ करने लायक है तो भले है, तथापि करके उसको गौ कराया है। स्वरूप को तथापि लगा करके पर्याय की मुख्यता कभी नहीं कराते। और नाम के पर्याय जो आप तो जितने भी परिणमते हैं उस प्रकार के फेरफार केवल ज्ञान के पर्याय में होते कि नहीं होते, साथ ही साथ तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। वर्तमान समय में जो केवल ज्ञान के पर्याय में जितने भी थे वर्तमान पर्याय वाला, वो दूसरे समय में इस सभी वर्तमान पर्याय भूतकाल के प्रेम में चली गई और उस वक्त जो भावी पर्याय थी वो वर्तमान में आ गई, एक समय पीछे वाले जो थे वर्तमान में आ गई, फर्क हुआ कि नहीं हुआ।
मैंने
वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान का तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो गेम तो पलटते हैं, जो जो हरा पत्ता था वो पीला हो गया, तो ज्ञान में भी जो हरा दिखता था वो पीला दिखने लगा, तो ज्ञान में भी उतना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। जैसे गेम बदलता है तो ज्ञान भी बदलता है, ऐसा बहुत से बड़े मुख्य कारण है, लोगों को ऐसा है कि उनको मानना ही पड़े, लेकिन केवल ज्ञान समुच्चय रूप से पूरा पूर्ण ज्ञान रहता है ऐसा स्थूल रूप से मानते हैं, सूक्ष्म रूप से देखे तो उसमें भी फर्क है। ऐसे ऐसे दर्शन उपयोग में है, ऐसे ज्ञान उपयोग में, ऐसे दर्शन उपयोग में है। अब कहते हैं कि आत्मा में गुण भेद है फिर भी ये गौण करने लायक है, क्यों कि गुण भेद का अवलंबन करने से राग के विकल्प की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो आश्रय करने लायक मुख्य करने लायक नहीं है।
गुणों के बिना व्यक्ति तो कोई है ही नहीं,
गुण भेद भी है और गुण से अभेद स्वरूप भी है, है कि नहीं? जब दो है तो दो तो मुख्य नहीं, दो को तो मुख्य कर सकते नहीं क्योंकि दो प्रतिपक्ष में है, दो है उसमें कोई मना नहीं कर सकते कि दो तो है, गुण भेद भी है इसलिए गुण भेद को स्थापित करेंगे और गुण से अभेद स्वरूप भी है, जब भेदपना भी है अभेदपना भी है और वो प्रतिपक्ष में है तो विवेक यही करना है कि किसको गौण करे और किसको मुख्य करे, तो दोनों को मुख्य कर नहीं सकते क्योंकि दो परस्पर विरुद्ध है, तो जिसको मुख्य करने से वितराग है, प्रयोजन तो क्या है वितरागता का, वितरागता किसको मुख्य करने से वितरागता होती है, अभेद को मुख्य करने इसलिए तथा पे लगाएंगे, मूल वेद को तथा पे लगा देंगे। तथा पे तो आश्रय करने लायक नहीं है, थोड़ा फल लेंगे इसमें कि जैसे सोने का चिकनापन पीलापन भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है सत्यार्थ है नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं आचार्य महाराज। व्यवहार में के विषय को व्यवहार व्यवहार रूप स्थापित करते हैं, है ही नहीं ऐसा तो कहते हैं, है तो सही किंतु जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता है भूतार्थ है सत्यार्थ है। तो वेद के ज्ञान में वेद का ज्ञान विलय हो गया ऐसा कहते हैं क्या, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कैसे कि हमको कोई सोने का जेवर या लकड़ी दिखाते हैं कि ये सोना है, तो हमको सोना इतना नाम से या पदार्थ को देखने से ही इसके विकल्प में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जिसको सोना कैसा होता होगा वही पता नहीं है, उसको विचार करने पड़ेगा कि ये तो कोई पीला पीला चमक रहा है, भारी भारी भी है, काटते हैं तो चिकनापन भी उसमें दिखता है, उसमें जो घाट है वो चिकनापन के हिसाब से ही है। तो ये पहचान करने के काल में गुण भेद में जाना पड़ता है। तत्स अनेशन काले युक्ति मुग्धेन, तत्व के निर्णय करने के काल में युक्ति मार्ग से द्रव्य पर्याय से उत्पाद ध्रुव से द्रक्षित्र काल भाव से पदार्थ का निर्णय किया जाता है। नो आराम समय आराधना के काल में अनुभव के काल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम गुरुदेव का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही उनके हमको इनके भेद प्रभेद के विचार में जाना पड़ता है कि ऐसे इतनी तो ऊंचाई थी, इतने तो इनके जो पर्सनालिटी थी, इतने इतने प्रकार के पर्सनालिटी थी, तो विचार करना पड़ता है। क्यों नहीं विचार करना पड़ता है, और जिसको विचार करना पड़ता है इसको क्यों विचार करना पड़ता है, बस दो बात को समझ लें कि जिसको पहचान नहीं है कि गुरुदेव कैसे थे उनको तो सब पहचान वेद प्रवेद का विचार कि कैसे होंगे, और जिसको परिचय उसको तो नाम लेते ही पूरी मूर्ति ज्ञान में आ जाती है। एक नाम लेते ही पूरी मूर्ति खड़ी हो जाती है ज्ञान में, ये मैच्योर नॉलेज है। एक नाम लेते ही पूरा पदार्थ ज्ञान में आ जाए, ये ज्ञान बराबर परफेक्ट है मैच्योर है। और जिसको वेद प्रवेद में समझाने की जरूरत पड़े उसको समझा नहीं है इसलिए वेद प्रभेद करके उसको समझाना पड़ता है। तो परिपक्व ज्ञान होता है, मैच्योर में परिपक्व जो ज्ञान होता है उसमें वेद प्रभेद में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोना बोलते ही इसका भाव का भी विचार नहीं करना पड़ता कि लोहे से इतना गुना ज्यादा है, सोना मैंने सोना पूरी उसकी कीमत के साथ ही सोना का ज्ञान हो जाता है। ऐसे आत्मा गुरुदेव तो पहला वचन ही बोलते थे, प्रवचन करते थे तो उसके एक शब्द पहले वो निकलता था कि यह आत्मा, उस आत्मा कहते ही पूरी आत्मस्वरूप की बुद्धिमान आत्मस्वरूप ज्ञान में खड़ा हो जाता है। तो ये आत्मा से अभेद ज्ञान, आत्मा का अभेद ज्ञान हो जाता है। लेकिन आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ऐसा विचार कब तक करेंगे कि जब तक उसका अभेद ज्ञान नहीं होता है तब तक किया जाता है। भेद समझाते हैं भेद साधने के लिए नहीं, किंतु भेद समझाते हैं अभेद साधने के लिए। ये पद्धति है अध्यात्म की, है पद्धति है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुरुरूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता होता है। ज्ञान है वो ज्ञान है, दर्शन है वो दर्शन है, आनंद है वो आनंद है, ज्ञान है वो आनंद नहीं, आनंद है वो ज्ञान है। ये अनुभव से मालूम पड़ता है और अपने स्थान में ऐसे भेद है। तथापि बस कर दिया खत्म, पूरा का पूरा भेद को खत्म कर दिया, विलीन कर दिया भेद को, भेद को विलीन कर दिया, भेद ज्ञान में भेद को विलीन कर दिया। और एक रहस्यपूर्ण बात ऐसी है कि जो तेरियंत वगैरह हैं या बहुत कम सूक्ष्म वाले मनुष्य होते हैं, जिसको बहुत वेद प्रबोध वेद प्रवेद का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बहुत अल्प वेद पड़ता है कि ज्ञान है ऐसा आत्मा है, जैसा मेरा ज्ञान है वैसा ही आत्मा है, ये राजा भी चलता है ऐसा मेरा आत्मा नहीं है, पश्चे रास्ते से उतना वेद से जब ये ज्ञान स्वभाविक अनंत गुणात्मक अनंत गुण का एक रूप आत्मा का अनुभव करता है जब, तभी उसको भेद का शून्य ज्ञान होता है। भेद को अवलंबन करके भेद को जहां तक जानता है वहां तक भेद का शून्य ज्ञान नहीं होता, लेकिन भेद को छोड़ करके जब अभेद ज्ञान होता है तभी ही भेद का शून्य ज्ञान होता है। ऐसी एक परिस्थिति अभेद ज्ञान जब होता है, अनुभूति ज्ञान होता है, तब बनता है। और ये सही है, जैसे हम सीखते हैं ग्रंथ पर्याय उत्पाद वेद ये सब भेद है, लेकिन ये भेद का सही ज्ञान मान्य नहीं है। जहां तक अभेद आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ वहां तक ये सही ज्ञान नहीं होता है। क्यों? भेद पर पूरा भेद पड़ जाता है, जहां तक अभेदता साधित नहीं होते वहां तक भेद से जानने में, भेद का ज्ञान करने में खंड खंड ज्ञान टुकड़ा हो जाता है, पदार्थ ज्ञान में अखंड नहीं रहना। ऐसी परिस्थिति होती है जो वस्तु के स्वरूप के साथ सुसंगत नहीं है। तो क्या कहना है, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, कोई भेद सभी भेद जिसमें समाविष्ट हो गए हैं, विलय हो गए हैं, भेद दिखते ही नहीं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता है भूतार्थ है असत्यार्थ है, अपने स्थान में होने पर भी अभेद के अवलंबन में भेद का अनुभव होता नहीं, वेद का ज्ञान होता है अनुभव नहीं होता है, दोनों ज्ञान के पर्याय में फिर से अभेद अनुभव के काल में, अभेद स्वरूप के अभेद स्वभाव के अनुभव के काल में अनुभव में अभेदता ही अनुभव में आती है, वेद का अनुभव नहीं होता। लेकिन वेद का ज्ञान नहीं होता है सो बात और यहाँ पे वेद पढ़ता है तो वेद का ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। देखो क्या चमत्कार है ज्ञान का, ज्ञान में वेद पढ़ता नहीं और वेद का समय ज्ञान हो जाता है। जैसे स्वामी भोज के काल में त्रिकाली द्रव सामान शुद्धात्म स्वरूप अवध स्पष्ट जो कहा उसका अवलंबन है, और अपना स्वसंवेदन में स्वयं का अनुभूति स्वरूप ज्ञान का अनुभव है। जो त्रिकाली है वो एक बड़ा अंश है, कभी उसको अंश भी कहते हैं, और जो स्वसंवेदन है वो एक समय की पर्याय है। दोनों में अंतर है, एक नित्य है दूसरा अनित्य है। नित्य अनित्य का सही ज्ञान कब हुआ, और नित्य अनित्य होकर के पूरा पदार्थ जो प्रमाण का विषय रूप है इसका ज्ञान कब हुआ, यानी ज्ञान प्रमाण कब हुआ, क्या अनुभव के काल में हुआ, इसके पास क्या में इसके पहले जानकारी वाले ज्ञान में ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ था। पहले विकल्प से जानकारी करते हैं कि जो द्रव्य पर्यायात्मक सत है वो प्रमाण ज्ञान का विषय है, लेकिन उस वक्त ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ है। क्या प्रमाण ज्ञान का विषय कैसा है ऐसा हम जब समझते हैं तो हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं होता है। इस वक्त जो मुख्य करने लायक नहीं है उसको मुख्य करे तो ये मुख्य गुण का विपर्यास हो गया, उसको कारण विपरीतता कहते हैं। मिथ्या ज्ञान के तीन दोष हैं, इसमें कारण विपरीतता है, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता है ये, और क्रम विपरीतता पर भी क्यों कारण विपरीतता में क्रम विपरीतता आती है, इसमें एक भी विपर्यास रहे वहां तक अनुभव हो सकता नहीं, समय दर्शन होता है। एक गुणभेद विषय चर्चा तो आखिर की बात है। आत्मा है संयुक्त है इससे जल का दृष्टांत से समझाते हैं कि जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णता के साथ, उष्णता इसकी पर्याय है लेकिन इसकी पर्याय निमित्त नैमित्त एक संबंध से हुई है, स्वभाव से तो हुई नहीं है क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है। इसलिए जल का उष्ण अवस्था की सीधी बात नहीं है, अग्नि जिसका निमित्त है ऐसे उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता अद्भुतार्थ है, सत्यार्थ है। अगर वो नहीं माने तो गर्म पानी पी लेगा, पानी तो ठंडा ही होता है, हम तो अवस्था को मानते नहीं, पर्याय की बात मत करो, ऐसा नहीं चलता है। पर्याय को भी पर्याय के स्थान में जानना ये न्याय संपन्न है। व्यवहार में उबार में जाने में तो वो बात चल रही है कि व्यवहार भी स्वकाल में जानना प्रयोजनभूत है, न्याय संपन्न है, जानना अपने स्थान में उसको जानना चाहिए, भले ही व्यवहार में का विषय है लेकिन सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, इसकी पर्याय है दूसरे की नहीं है। तो ऐसा उष्णपना के साथ पानी संयुक्त है, संयोग में आया आई है। उष्णता क्या क्या आई है? संयोग में आई है, क्योंकि वो चली जाएगी, उसका वियोग हो जाएगा। इसलिए संयोग किसे कहते हैं कि जिसका वियोग हुए उसको संयोग कहते हैं। तो उष्णता थी नहीं पहले पानी में, अनादि से तो पानी में उष्णता हो ही नहीं सकती। जब मतलब इसको अग्नि आदि पदार्थ का संयोग मिलता है तो पानी की अवस्था उष्ण होती है, तो उष्णता को संयोग बोल दिया, क्योंकि फिर वो चली जाएगी, रहने वाली नहीं है। आप अपने आप पानी ठंडा हो जाएगा, अग्नि का निमित्त दूर होने से पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है ठंडा होने का, गर्म होने का स्वभाव नहीं है। इसलिए संयुक्तता उष्णता पदार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव, जल स्वभाव में एकांत शब्द लगाया है, शैली है, वजन देना है, तथापि करके उस पर वजन देना है, तो जल की शीतलता ये इसका एकांत स्वभाव है। एकांत स्वभाव कैसे कह रहे हैं आप? पानी तो गर्म हो गया, अग्नि पर रखने से पानी तो गर्म हो गया, तो इस वक्त तो उसकी उष्णता दिखने में आती है, उसकी शीतलता दिखने में नहीं आती। नहीं, एकांत है उस वक्त भी, उसमें ठंडा शीतल स्वभाव मौजूद है। अवस्था उष्ण होने पर भी स्वभाव की शीतलता का नाश हुआ नहीं है।
इस गर्म पानी अग्नि हो जाएगी,
वो अग्नि को खत्म कर देंगे। वही गर्म पानी अगर अग्नि पर डाला जाए तो अग्नि खत्म हो जाएगा, अग्नि जिंदा रहेगा नहीं। है शीतलता ऐसा, तो उष्ण अवस्था के काल में भी पानी के शीतल स्वभाव का ध्यान हम कर सकते हैं। ऐसे संसार की विकारी अवस्था में भी अविकार स्वभाव का ज्ञान हो सकता है, तो बात तो ना ले रही है। हो सकता है कि हम क्या करें, हम तो रहे ज्ञानी, बात बात में ज्ञानी की बात चले, आत्मा की बात चले, तो हम क्या करें, हम तो रहे ज्ञानी। ऐसा अज्ञानी पने को मुख्य करने के लिए अज्ञानीपना भी बताया गया नहीं है। अज्ञान अवस्था में भी हम ज्ञानी हैं ऐसा ज्ञान करने से अज्ञानता मिट जाती है, उसी वक्त मिट जाती है। सम्यक ज्ञान का उत्पाद होता है जिस समय, ठीक उसी ही समय में, इसके पहले भी नहीं इसके पीछे भी नहीं, अज्ञान का नाश होता है। जिस समय में मिथ्यात्व का नाश होता है उसी समय में सम्यक्त्व का उत्पाद है। उत्पाद का दो समय होता नहीं है, एक ही समय में वही है वही उत्पाद है, दो समय नहीं है आगे पीछे। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्त बना संयुक्तता है, भूतार्थ है और असत्यार्थ है, क्योंकि स्वभाव में कभी उष्णता हो सकती नहीं है। तो स्वभाव में तो वहां है ही नहीं, स्वभाव में तो उष्णता तीनों काल में पानी में है ही नहीं, इसलिए वो असत्यार्थ है, वहां उसकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था, मोह को संयोग बताया है। मोह है वो स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। अवस्था में आत्मा की अवस्था होने पर भी ये संयोग रूप
अग्नि
की उष्णता को पाने की है उस तरह से जैसे अग्नि से पानी गर्म हुआ ऐसे कर्म का उदय का आलोकन लेने से होने कर्म का उदय है और उस पर झुका हुआ है जीव का परिणाम तो सदृश परिणाम हो जाते हैं भाव में भी मोह उत्पन्न होता है लेकिन जो भाव में मोह हुआ ये संयोग रूप अवस्था है उसकी कोई कीमत नहीं है मेहमान है वो मेहमान ही रहते हैं घर के होते आते हैं चले जाते हैं उसका दूसरा नाम क्या है आगंतुक बोलते हैं मेहमान को क्या बोलते हैं आगंतुक बोलते हैं घर के नहीं बोलते हैं ऐसे ही मेहमान है वो मेहमान है आता है जाता है सभी प्रकार के विभावों का ही प्रस्ताव किया है सभी प्रकार के जितने भी विभाव परिणाम है वो आगंतुक लिखा है समय साथ उसको आगंतुक भाव बोले हैं आते हैं चले जाते हैं आते हैं चले जाते हैं
तो बहुत बड़ी
हाँ ये बात तो जरूर है इसलिए चुकानी पड़ती है कि पूरी कीमत दे रखी है इसलिए चुकानी पड़ती है क्या ये मोह है वो जीव को निरुद्ध अवस्था तक ले जाता है मोह के कारण से गया दर्शन मोह तीव्र होने से निरुद्ध हो गया कीमत तो बड़ी चुकाई अनंत प्रचुर दुख का अनुभव होता है अनंत दुख का कीमत तो बड़ी चुकानी पड़ती क्यों कि ऐसा ही मैं हूं इसलिए बाधा में क्या कहते हैं उसे भी क्यों ऐसा राग होता है तो हम विचार करोगे हम तो ग्रस्त हैं हम तो मूर्ख हुए हमारी भूमिका का ये राग है ये जो भूमिका जो पर्याय का व्यामोह है उस व्यामोह को दृढ़ कर लेते हैं और दोष का बचाव कर लेते हैं उसको बना लेते हैं स्वभाव में नहीं है ऐसा पता है अवस्था में है ऐसा माने तो किंतु लगा ले अवस्था में है ऐसा ज्ञान पर तथापि स्वभाव में नहीं है इस तरह से उसको समझे सब दूसरी बात करें कि अवस्था में हूं भी है और उस वक्त स्वभाव है क्या नहीं है मौलिक स्वभाव है क्या नहीं है मौलिक स्वभाव कैसा है तो परमात्मा स्वरूप है जैसा जिनेन्द्र परमात्मा है सिद्ध परमात्मा है वैसा ही हमारा स्वभाव है दोनों की मौजूदगी एक साथ है दोनों हैं जब दोनों एक साथ खड़े हैं एक मोह की मूर्ति एक निर्मोह की मूर्ति हमें कहां झुकना है वो एक है करके झुकना है मोह तो है ऐसे करके वहां झुकना है पर है तो वो नहीं है क्या स्वभाव नहीं है क्या वो भी है तो वो है ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो है ऐसा करते हैं ये सरासर अन्याय है परमात्मा विराजमान अंतर में होने पर भी उसको गौण कर देते हैं उसका असत्कार करते हैं अनादर करते हैं आदर नहीं करते इसका नाम ही अनादर है तो ये क्या अपराध नहीं है क्या मोह तो क्या है मोह जो पर्याय है वो तो बेचारे भिखारी है ये तो सुख के लिए भीख मांगती फिरती है घर घर पे जाती है घर घर पे जाती है इधर से सुख लो इधर से सुख लो इधर से सुख लो तो एक भिखारी है और एक परमात्मा है परमात्मा के सामने तो देखेंगे तो भिखारी को देखता रहे कितना बड़ा है विवेक है तो इतना अविवेक करते हैं तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा कुदरत का कानून है
भूमिका का आलंबन करने से
स्वभाव का आलम्बन लेते ही बेचारा हो टिक सकता
नहीं है,
तो मर जाता है। मर जाता है क्या, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मर जाता है। क्यों, इतनी ताकत है, इतनी हमारे में ताकत है कि मोह की मृत्यु हो सकती है। एक समय में खत्म होता है, दूसरा समय लगता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता अवस्था से अनुभव करने पर तो संयुक्तता मोह भाव अपने स्थान में है, सिर्फ बिल्कुल नहीं है, अवस्था में भी मोह नहीं है, तो भी मोक्ष मार्ग का सवाल उत्पन्न नहीं होता कि उसका नाश करने का कोई मार्ग उपाय इलाज करें, तो बात रहती नहीं है। इसलिए एकांत नहीं है ऐसा तो नहीं चलेगा, है सही सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांत बोध बीज रूप स्वभाव है, देखो क्या विशेषण लगाया स्वभाव को, कि जिसका दर्शन करते ही जिसको पर्याय स्वभाव का दर्शन करती है स्वयं बोध स्वरूप हो जाती है। क्यों, कि ये ज्ञान की बोध की मूर्ति ही है, बोध भी स्वरूप ही है। पर्याय में जो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान पनपता है, इसका बीज कहां पड़ा है, इस स्वभाव में पड़ा है, तो उसका अवलंबन लेते ही ये ज्ञान है वो बाहर आता है। इसलिए स्वभाव को बोध बीज कहने में आता है, बीज मेरे कोई छोटी चीज नहीं है, जिसमें पूरा वृक्ष पनपने की ताकत होती है उसको बीज कहने में आता है। भले छोटा हो दिखने में, तो वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, राई के दाने से भी कम होता है, वृक्ष कितना भी बनता है बड़ा,
बोध बीज है तो सबके पास,
उगता नहीं है, उसको है भी नहीं। ठीक, कहते हैं कि बोध बीज तो सबके पास है लेकिन उगता क्यों नहीं है, कि जिसको उगता नहीं है उसको बोध बीज है भी नहीं, कहा है स्वानुभूति चका सकते, अनुभूति स्वरूप में वो तो बात चली है गाथा में, है मैंने अनुभव से है कि नहीं है, परलक्ष ज्ञान में है वाली बात नहीं है कि बराबर है। परलक्ष ज्ञान में है वाली बात नहीं है कि बराबर है,
जब तक अनुभूति नहीं है
जी,
जब तक अनुभूति नहीं है
नहीं है, उसके लिए आत्मा है ही नहीं, अनात्मा ही है, आत्मा इसके लिए अनात्मा ही है, खुद जड़ जैसा हो गया है, जड़ ही हो गया है समझो। इसलिए तो स्वलक्ष ज्ञान के दो प्रकार कहने में आए हैं, स्वलक्ष ज्ञान और परलक्ष ज्ञान। जैसे राग से आत्म कल्याण नहीं होता, किसी भी प्रकार का राग हो, आत्मकल्याण राग साधता नहीं, सतता नहीं से, वैसे परलक्षी ज्ञान से कभी आत्मकल्याण नहीं होता। कितना भी आगमन पूर्व हो, तो भी अज्ञानपूर्व वाला परलक्षी
ज्ञान में राग शामिल है,
परलक्षी ज्ञान में राग का आधार लेकर के वो ज्ञान चलता है, परलक्षी ज्ञान राग आधारित चलता है, वो स्वभाव आधारित ज्ञान आधारित ज्ञान है नहीं। तो परलक्षी ज्ञान सम्यक ज्ञान कराने के लिए नायक नहीं है, भले अज्ञान का हो, लेकिन समय ज्ञान कराने के लिए उसकी कोई लायकात नहीं है। ऐसे ही परलक्ष्य ज्ञान से श्रद्धा की उत्पत्ति भी नहीं होती, विश्वास नहीं आता है। स्वलक्ष्य ज्ञान में ही विश्वास रखता है, तो श्रद्धा का उत्पादक स्वलक्ष्य ज्ञान है। सम्यक श्रद्धा का उत्पादक, सम्यक दर्शन का उत्पादक स्वलक्ष्य ज्ञान होता है। हाँ, कर सकते हैं। वो प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न होना चाहिए था कि जब हम ज्ञान करते हैं तब हम समझ करते हैं, ज्ञान करते तब तो शास्त्र स्वाध्याय के काल में हम समझ करते हैं, तो हमारे समझ का केंद्र स्थान हमारा आत्मकल्याण अगर है तो ज्ञान परलक्ष्य है, अगर उतना नहीं है तो ज्ञान परलक्ष्य है। ठीक, उसको रूपानुदेव ने 689 में आशय कहा है कि आपके स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है वो किस आशय से होती है ये बताइए, इसमें कौन सा मकसद है आपका, क्यों करते हो? अगर उस वक्त आपका आत्मकल्याण विस्मृत हो गया है तो लक्ष्य ही नहीं हुआ है, इसलिए पूर्णता का लक्ष्य लिया है कि लक्ष्य है उसका संबंध स्मृति विस्मृति से कभी नहीं रहता, क्योंकि स्मरण है वो विस्मृति के साथ जुड़ा हुआ है, स्मरण का विषय नहीं है। लक्ष्य तो हमेशा हमेशा जारी ही रहता है, कभी मिटता नहीं, होता है तब से कभी मिटता ही नहीं है, उसी को ही लक्ष्य कहते हैं। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति क्या, जीवन के किसी भी कार्य के क्षण हो, परिणाम हो, चाहे सुख का चाहे दुख का, चाहे खाने का पीने का सोने का, कोई भी हो, जिसको लक्ष्य है वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए खाना तो भी आत्मकल्याण के लिए, और उपवास करना तो भी आत्मकल्याण के लिए, बोलना तो भी आत्मकल्याण के लिए, मौन रहना तो भी आत्मकल्याण, कमाना तो भी आत्मकल्याण के लिए, निवृत्ति लेना तो भी आत्मकल्याण के लिए। ठीक, यही लक्ष्य रहना चाहिए हर हमेशा, तो कोई आपत्ति नहीं है। ये स्वलक्ष्य ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। शास्त्र स्वाध्याय में क्या, सभी तो स्वलक्ष्य ज्ञान से परोक्ष रूप में रहता है, इसलिए वो पुरुषार्थ का उपाय आता है। परलक्ष्य ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं होता है, परलक्ष्य ज्ञान वाला शिकायत करेगा कि जानते तो सब है लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, पुरुषार्थ उठता ही नहीं है, क्या करें इसके लिए, क्या करें, तो सब जाने में ही ये बात क्यों नहीं जानी, क्या कहते हैं कि जानते तो सब जाना, इसमें पुरुषार्थ कैसे नहीं उठता, वो जानने का क्यों रह गया, सब में ये क्यों नहीं आया, लेकिन ये सब है ही नहीं तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। प्रश्न ये पूछेगा, पुरुषार्थ में होता है, अंतर्मुखता नहीं होती है, कैसे की जाए, तो क्या जाना, क्या फिर जाना, जानने के जानने लायक था उसको तो जाना ही नहीं, मैंने कुछ जाना ही नहीं। इसलिए स्वलक्ष्य ज्ञान है वो पुरुषार्थ का उत्पादक है, जबकि परलक्ष्य ज्ञान स्वाभिमुख पुरुषार्थ का घातक है। पर लक्ष्य पुरुषार्थ को ही अब आगे बढ़ाता है, पर सम्मुखता के पुरुषार्थ को ही वो वेद देता है। ऐसे स्वलक्ष्य और परलक्ष्य ज्ञान सभी गुण को ठीक करता है या ठीक करता है, इसलिए ज्ञान पर ही सारा दारदार जो है वो ज्ञान पर ही है, स्वलक्ष्य है या परलक्ष्य। जबकि हम लोग शास्त्र स्वाध्याय की मुख्य प्रवृत्ति करते हैं, वो ज्ञान का व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है, तो ये सही है या सही नहीं है, इसका विवेक हमें करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही गाड़ी चल जाएगी और आयु पूरा हो जाएगा। ऐसे एकांत बोध भी जो स्वभाव है उस चैतन्य भाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता है, होता है सत्याग्रह, क्योंकि बोध स्वभाव में अनुभव वाले का परछाई भी पड़ती नहीं है, गंध भी नहीं है, वो और जगह है, मोह भाव कहीं और जगह है और हमारा स्वरूप कहीं और जगह है। हमारे मतलब हमारा स्वरूप से है, वो से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो दुखदायक ही है। जैसे पांच विशेषण की टिकाया आचार्य महाराज समाप्त करते हैं।